कला सिखलाता है राज यो।
दुख दर्द रोगों से मुक्ति दिलाता है राज योग।
दुख दर्द रोगों से मुक्ति दिलाता है राज योग।
इंसान को जीने की कला सिखलाता है राज योग।
आप हमारे आदरणीय राजयोगी भ्राता डॉक्टर श्रीमंत साहू जी हैं। माउंट में जो हमारा ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर है, वहां पर आप 1991 से डेडिकेटेड रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप डायबिटीज के स्पेशलिस्ट हैं और आपने 3 यूनिवर्सिटी से इस डॉक्टर की पढ़ाई की है। एमबीबीएस संबलपुर यूनिवर्सिटी से किया है, डीए बॉम्बे यूनिवर्सिटी से किया है और एमडी अन्नामलाई यूनिवर्सिटी से किया है।
ओम शांति। सभी फिर एक बार बोलिए ओम शांति। आप सभी अभी अभी सूर्य भाई से सुन रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि सूरज भाई ने आप सभी को बहुत एक अच्छा स्पिरिचुअल फिस्ट खिलाए। अभी मैं आपको एक हेल्दी फिस्ट खिलाने जा रहा हूं। आप सभी स्वास्थ्य संबंधित बातें सुनने के लिए उत्सुक हैं, जरूर इसलिए तो बैठे हैं। देखिए, जीवन में वर्तमान समय अनुसार आध्यात्म की बातें समझना जितना जरूरी है, इस प्रकार स्वस्थ जीवन जीने की कला सीखना भी इतना ही आवश्यक है। और आध्यात्मिक साधना में वो प्रगति कर सकता है जिसका जीवन स्वस्थ है। अगर जीवन में कोई स्वस्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकता है, आध्यात्मिक साधना में भी आगे नहीं जा सकता है। तो चलिए हम सुनते हैं स्वस्थ जीवन शैली। हम क्या करने से हमारा जीवन सदा के लिए स्वस्थ हो जाएगा और हम सभी निरोगी बन जाएं, इसके लिए कुछ आपको कुछ टिप्स मैं आप सुनाऊंगा। आपके लिए एक सौगात लेके आया हूं, स्वस्थ जीवन का उपहार। देखिए, हमारे देश बहुत प्राचीन काल से, हम सभी को पता है, हमारे देश में बहुत ऋषि मुनि होके गए हैं जिन्होंने एक सुंदर स्वास्थ्य की आवश्यकता आध्यात्मिक साधना के लिए चाहिए ये बात की उनको महसूसता हुई थी और उन्होंने बताया था। और हम सभी बीच में भूल गए थे, परंतु रामदेव बाबा ने फिर से इस बात को फिर से सभी के अंदर जागृति लाया। हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे भारत में जो विधि हमारे ऋषि मुनि हमारे पूर्वज बता के हमें गए थे, बिना खर्चा कोई भी पैसे की आवश्यकता नहीं है, वो विधि हम प्राय भूल ही गए थे, विस्मृत हो गए थे। अब फिर से रामदेव बाबा ने रीइन्फोर्स कराया और हम देख रहे हैं आज अनेक प्रकार के आसन प्राणायाम द्वारा, शारीरिक व्यायाम द्वारा कैसे फिर से हम अनेक प्रकार की बीमारियों से मुक्त हो रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, आध्यात्मिक साधना के लिए भी एक सुंदर स्वस्थ शरीर की आवश्यकता है। तो प्रश्न उठता है कि स्वास्थ्य क्या चीज है, क्योंकि स्वास्थ्य के बारे में आज बहुत प्रकार की गलतफहमी है। हॉस्पिटल में बहुत ऐसे मोटे मोटे भाई बहने आते हैं, मैं उनको पूछता हूं आप अपना ध्यान तो थोड़ा रखिए। कहते नहीं डॉक्टर साहब, अभी तो मैं थोड़ा पतला हो गया हूं, पहले तो और हेल्दी था। क्या मतलब? कि जो जितना मोटा होता है उतना हेल्दी है क्या? तो वास्तव में लोगों में बहुत प्रकार की गलत फहमी है, परंतु स्वास्थ्य क्या चीज है? विश्व स्वास्थ्य संस्थान WHO ने कहा है कि किसी व्यक्ति का अगर कोई शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में, सामाजिक रूप में संपूर्ण स्वस्थ है, कोई बीमारी न होना ये कोई आवश्यकता नहीं है, कोई बीमारी ना भी हो, परंतु शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रीति से कोई अगर स्वस्थ है तो उसको हम संपूर्ण स्वास्थ्यवान कहेंगे। सो WHO हैज डिफाइंड कंप्लीट हेल्थ इज फिजिकल, मेंटल, सोशियल वेलबींग ऑफ ए पर्सन एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। परंतु और एक डायमेंशन है जिसके बारे में लोग आज अनभिज्ञ हैं। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, परंतु और एक फोर्थ डायमेंशन ऑफ हेल्थ जिसको हम स्पिरिचुअल हेल्थ कहते हैं, जो आज सभी विस्मृत हो चुके हैं, जिसके कारण ही आज हम सभी बीमार हैं। परंतु कोई आध्यात्मिक रीति से स्वस्थ हो जाए तो उसका जीवन संपूर्ण स्वस्थ हो जाए। तो आप सभी को मैं आध्यात्मिक स्वास्थ्य क्या है इसकी जानकारी थोड़ा दूंगा। देखिए, आध्यात्मिक रीति से स्वस्थ कौन है, शारीरिक रूप में स्वस्थ कौन है? किसी की अगर उसका ब्लड प्रेशर ठीक है, उसके टेम्परेचर ठीक है, उसके वजन सही है हाइट मुताबिक, और वो जो भी खाता है हजम होता है, ठीक से नींद करता है, भागदौड़ करके सब कुछ काम कर पाता है, तो उसको हम शारीरिक रीति से स्वस्थ कहते हैं। इस प्रकार मानसिक रीति से स्वस्थ कौन है? जो सबके साथ मिलजुल के व्यवहार अच्छा करता है, उसके मानसिक अवस्था सदा संतुलित रहता है, कभी भी सारे दिन में कभी एकदम डिप्रेस्ड तो कभी मूड एकदम एलिवेटेड ऐसे नहीं होता है, हर एक के साथ इमोशनल बैलेंस रख के चलता है, उसको मानसिक रीति से स्वस्थ कहेंगे। इस प्रकार सामाजिक रीति से स्वस्थ कौन है? जो समाज में रहते हैं हम, उसमें भी समाज में सबके साथ मिलजुल के रहें, सबको सहयोग दें, सबसे सहयोग लें, पर्यावरण का भी हम ख्याल रखें, तो उसको सामाजिक रीति से स्वस्थ कहेंगे। परंतु आध्यात्मिक रीति से स्वस्थ कौन है ये आज कोई नहीं जानते हैं। वास्तव में आध्यात्मिक रीति से अगर हम स्वस्थ होते तो ये संसार आज एक वसुधैव कुटुंबकम की जो गायन है, आज ये संसार एक परिवार जैसा हो जाता। परंतु आज देखिए, देश देश, जाति जाति, भाषा भाषा, धर्म धर्म, आपस में कितनी लड़ाई झगड़ा, कितने टुकड़े टुकड़े करके हम रखें। इसका मूल कारण है कि हमें आध्यात्म क्या चीज है पता नहीं है। अगर आध्यात्म को हम समझकर आध्यात्मिक रीति से स्वस्थ हो जाएं, तो स्पिरिचुअली अगर हेल्दी हो जाएं, स्पिरिचुअल हेल्थ इज द फाउंडेशन ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल हेल्थ। तो इसलिए जो आध्यात्मिक रीति से स्वस्थ हो जाएगा वो संपूर्ण स्वस्थ हो जाएगा। तो आध्यात्मिक रीति से स्वस्थ कौन है? देखिए, कोई व्यक्ति अगर स्वयं को आत्मा समझता है और सभी को आत्मिक दृष्टि से देखता है, हम हैं पंछी एक डाल के, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं पंछियां सारे बैठे हैं, सब हम ये संसार में पाट बजा रहे हैं। आप सभी को तो पताया होगा ना, अभी पता हो गया होगा कि हम सभी शरीर नहीं है, हम एक आत्मा है, हम परमात्मा की संतान हैं, ये संसार में खेल करने के लिए आए हैं। तो सभी को जो आत्मिक दृष्टि से देखता है, सबको सहयोग देता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब आपस में भाई भाई की भावना रखता है, और साथ में विश्व कल्याण अर्थ अपना समय संकल्प सुहास का उपयोग करता है और पिता परमात्मा की स्मृति में रहता है, उसको ही हम आध्यात्मिक रीति से स्वस्थ कहेंगे। तो आज दुनिया में आध्यात्मिक रीति से स्वस्थ कोई नहीं है। आप सभी यहां पधारे हैं, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है, यहां आप स्पिरिचुअली कैसे हेल्दी रहेंगे आप सीख के जाएंगे, देखना, फिर सारा जीवन आप तंदुरुस्त रहेंगे। आज विश्व में एक बहुत बड़ी समस्या है, सिर्फ विश्व में नहीं, हमारे भारत में खास, कुछ बीमारियां ऐसे तेज गति से बढ़ती जा रही है, आपको सुनने से आश्चर्य लगेगा। बीमारियां कई प्रकार के होते हैं। एक बीमारियां होती है जो एक दूसरे से को फैलती है, जैसे मलेरिया है, टीबी है, ये तो हम सभी जानते हैं। परंतु और कई बीमारियां हैं जो एक दूसरे को फैलती नहीं है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, कैंसर है, या हार्ट की बीमारियां है। ये सब बीमारियों को नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, वो संक्रमित नहीं होते हैं। ये बीमारियां आज सारे विश्व में पिछले 20-30 साल में ही इतना तेज गति से बढ़ रही है कि इसके चपेट से कोई भी मुक्त नहीं हो सकता है। आज ऐसी दुरावस्था है। WHO ने कहा है ये 5 बीमारियां, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी, स्ट्रोक, ब्रेन में हमारे नस फट जाते हैं, पैरालिसिस हो जाता है, उसको हम स्ट्रोक कहते हैं, और कई प्रकार के कैंसर, ये 5 मुख्य बीमारियां बहुत तेज गति से फैल रही है। और इसका मूल कारण है मोटापा। आज मोटापा एक महामारी का रूप ले चुका है। हमारे भारतवर्ष में इतने मोटे मोटे लोग पहले जमाने में नहीं थे। अभी हम सभी मशीन की जमाने में अभी कोई मेहनत करना नहीं चाहता है। बैठे बैठे हम अनेक प्रकार के जंक फूड, फास्ट फूड खाते रहते हैं, जिसके कारण मोटे होते जा रहे हैं और ये बीमारियों के चपेट में आ गए हैं। देखिए, भारत में मोटापा कुछ साल के अंदर में ही बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। और अभी शहरों में 50% महिलाएं खास बहुत मोटे होते जा रहे हैं। 2020 तक लगभग 60% से भी ज्यादा लोग मोटे हो जाएंगे। अमेरिका में सबसे बड़ी समस्या, स्वास्थ्य की समस्या अभी मोटापा है, इसलिए अमेरिका का सरकार बहुत एकदम चिंतित है। परंतु हमारे भारत, हम भी पीछे क्यों रहे, हम भी कंपटीशन करके अमेरिका से भी आगे जाना चाहते हैं। आज सारे विश्व में 30 करोड़ लोगों को डायबिटीज है, 30 करोड़, और हर साल लगभग 1 करोड़ लोग उसमें शामिल होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। पिछले साल में हमारे देश में 10 लाख लोगों का मौत सिर्फ एक बीमारी डायबिटीज के कारण हुआ। 10 लाख लोग, किसको कहते हैं 10 लाख, आप सोचिए कितनी बड़ी समस्या है, मानो एक सिटी खत्म हो गई। और ये सर्वे किया गया था, शहरी इलाकों में देखा गया है कि 50% महिलाएं हाइपरटेंशन से ग्रस्त हैं। इस प्रकार कैंसर भी इतनी बढ़ती जा रही है, हार्ट अटैक इतनी बढ़ती जा रही है। हमारे भारत सिर्फ क्रिकेट में हम चैंपियन नहीं है, बहुत सारी बातों में हम चैंपियन है, लेकिन बीमारी में भी क्यों पीछे रहे। हम डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक में विश्व में सबसे ज्यादा नंबर 1 भारतवर्ष है। ये कितनी दुरावस्था है, दुर्भाग्य की बात है। हमारा देश ऐसा एक समय था जब हम सभी निरोगी थे, हमारे देश में सभी निरोगी, कंचन काया का गायन है, सत्ययुग त्रेतायुग में कोई बीमार नहीं था। लेकिन आज देखिए, ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो बीमार नहीं होगा। तो हम क्यों बीमार हो रहे हैं, इसका मूल कारण क्या है? क्योंकि इसका मूल कारण हमारे खान पान और जीवन जीने की तरीका, जीवन शैली, जिसको लाइफ स्टाइल कहा जाता है, ये दोनों बातें जो जड़ है, जिसके कारण आज हम बीमार होते जा रहे हैं। आप चित्र में देख रहे हैं ये मोटू राम क्या कर रहा है, आप देखिए सामने क्या है, क्या है सामने, एक इडियट बॉक्स। हम इसको टीवी नहीं कहते हैं, इडियट बॉक्स। टीवी देख के खा रहा है, एक हाथ में रिमोट कंट्रोल है, दूसरे हाथ में कुछ खा रहा है। टीवी देखते देखते कितना खा गया क्या पता, क्या हालत है आप देखिए। तो इसलिए अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, एक ट्रायड हम बताते हैं स्वस्थ जीवन का, ये त्रिकोण में 3 चीजें मैं बताऊंगा, अगर ये 3 चीजों का आप ध्यान रहेंगे जीवन में सदा स्वस्थ रहेंगे, आपको कोई भी बीमारी नहीं आ सकती है। वो 3 चीजें क्या है, एक है बैलेंस्ड एंड वेजिटेरियन डाइट, दूसरा है फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज। हम जो भी हम खाना खाते हैं ये संतुलित होना चाहिए। हम सभी मनुष्य एक शाकाहारी प्राणी है, हमारा भोजन वेजिटेरियन होना चाहिए और हम बैलेंस डाइट लें, साथ साथ फिजिकली एक्टिव रहें, भागे दौड़े सब काम करें, चुस्त फुर्त रहें। और तीसरी बात है तनाव मुक्त जीवन के लिए हम कुछ समय मेडिटेशन करें। ये 3 बातों का अगर कोई संतुलन रखता है, बैलेंस रखता है, उसका जीवन सदा के लिए ब्लिसफुल हो जाएगा, वो सबका ब्लेसिंग्स का पात्र बन जाएगा। आपको आश्चर्य लगेगा, आज दुनिया में ऐसा एक व्यक्ति नहीं होगा जिसको तनाव नहीं होता होगा। और वैज्ञानिकों ने सर्वे करके देखा है, रिसर्च करके देखा है, स्ट्रेस 60% कारण है जो आज ये बीमारियां बढ़ती जा रही है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस है, जो कैंसर है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की बीमारियां है या डायबिटीज है, इसका जड़ में है तनाव। तो तनाव मुक्त होने के लिए कोई दवाई नहीं है किसी के पास भी। आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, आपको सोने के लिए दवाई दे देंगे, दो चार घंटा सो जाएंगे, बस जैसे जागेंगे फिर वही अवस्था। परंतु तनाव मुक्त होने का, टेंशन मुक्त होने का सबसे सहज साधन है मेडिटेशन, जो आप यहां सीखेंगे। तो देखिए, मेडिटेशन फॉर स्ट्रेस फ्री लाइफ क्या चीज है। आप यहां इतना दूर दूर से, हमारे भारतवर्ष के कोने कोने से मैं देख रहा हूं, इतने भाई बहने आप पधारे हैं, मेरा एक नम्र निवेदन मैं कहूंगा, मैं एक डॉक्टर होने के नाते इस संस्था में जुटा कोई बचपन से नहीं। जब मैं एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में, एक बड़ा हॉस्पिटल में सर्विस करना शुरू किया, और रोज मुझे कम से कम 200-300 पेशेंट देखना पड़ता था। और सरकारी हॉस्पिटल में किस प्रकार का लोग आके व्यवहार करते हैं आप कभी देखेंगे, आपको अनुभव होगा। मुझे ऐसा लगता था कि बहुत कम उम्र में मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा कि हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। और ऐसे समय पर ही मैं इस संस्था के संपर्क में आया, और सबसे पहली बार 1986 में मैं यहां पधारा था। तब तक ये शांतिवन नहीं था, हमारा ऊपर माउंट आबू में मधुवन ही था, जहां हमारी दादियां रहती थी, बहुत छोटा सा स्थान। और उनके व्यक्तित्व को देखते हुए, निस्वार्थ प्यार को देखते हुए, मैं जीवन में उस दिन ही तय कर लिया कि नहीं, जीना है तो इस प्रकार का जीवन जीना है। और आज मैं 21 साल हो गया माउंट आबू में, हमारे ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर है, वहां मैं 21 साल से सेवा दे रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं 21 दिन पहले आया था। मेरा जीवन के वर्ष मास ऐसे बीतते जा रहे हैं जैसे कि सेकंड। कहते हैं सुख के दिन बहुत जल्दी बीत जाते हैं, और दुख के दिन, एक रात अगर आपको पेट में दर्द, नाक में दर्द, दांत में दर्द होता है, देख लीजिए, एक रात आपको एक साल जैसा लगेगा। लेकिन यहां इतने सुंदर जीवन है कि मुझे 21 साल कैसे बीत गया सपना जैसा लग रहा है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाई और बहनों, अगर आप जीवन में तनाव मुक्त रहना चाहते हैं तो मेडिटेशन सीखिए। तो मेडिटेशन फॉर स्ट्रेस फ्री लाइफ, प्रश्न उठता है मेडिटेशन क्या चीज है। मेडिटेशन इज द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप को रियलाइज करने का विज्ञान का नाम मेडिटेशन है। एंड मेडिटेशन इज रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन इज रियलाइजेशन ऑफ द रियल आई। मैं वास्तव में मैं कौन हूं, आपको परिचय मिला सबको, आप सभी कौन है, परिचय मिला, मिला परिचय सबको। तो जो रियल आई, मैं कौन हूं, वो जानने का विज्ञान, उसका नाम ही वास्तव में मेडिटेशन है। वास्तव में जीवन में कभी आपने सोचा है कि मैं कौन हूं, सोचा है कभी, आप कभी सोचे थे यहां आने से पहले, सोचे थे? कोई भी विद्वान, पढ़ा लिखा कोई भी हो, कभी कोई नहीं सोचता है। वास्तव में क्या हम एक फिजिकल बीइंग है, ये जो शरीर देख रहे हैं क्या ये हम हैं? नहीं नहीं, ये शरीर तो जो देख रहे हैं, ये तो जो पार्ट हम देख रहे हैं, ये आंखों से दिखाई दे रहा है, परंतु सत्यता तो इसके अंदर है। इसके अंदर क्या चीज है, सच तो यही है कि हम हड्डी मांस का एक पुतला ही हैं। आप अगर कभी ऑपरेशन थिएटर में आए, हॉस्पिटल में, मैं आपको दिखाऊंगा कि हम कौन है। ये शरीर के अंदर मल मूत्र, कफ पित्त रक्त, गंदगी के सिवाय कुछ भी नहीं है। एक ऊपर से एक चमड़ी ढका हुआ है बस, लेकिन इस चमड़ी को देख के हम एक गलत फहमी में आ जाते हैं कि हम कौन है। वास्तव में ये शरीर के अंदर हड्डी मांस ही है, और विज्ञान कहता है कि हम सभी, वी आर फिजिकल बींग्स लिविंग इन फिजिकल वर्ल्ड, हम सभी फिजिकल बींग्स हैं, क्योंकि साइंस डील्स विथ फिजिकल मैटर। परंतु उनको पता नहीं है कि हमारे शरीर के अंदर छिपा हुआ और एक स्पिरिचुअल बीइंग है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, जिसको हम सोल कहते हैं, जिसको हम रूह कहते हैं, स्पिरिट कहते हैं। तो हम सभी वास्तव में वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स लिविंग इन स्पिरिचुअल इन फिजिकल बॉडीज। वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स लिविंग इन फिजिकल बॉडीज। ये शरीर वास्तव में आत्मा, जैसी अवस्था आत्मा की होती है ये शरीर भी ऐसा ही बनता है। जैसे आप एक बहुत एक प्योर डायमंड का जेवर खरीदते हैं ज्वेलरी शॉप से, तो वो जो ज्वेलरी खरीदते हैं उसका जो डिब्बा होगा वो भी उतना ही वैल्यूएबल होगा। अगर प्योर डायमंड का बहुत कीमत देके आप खरीदते हैं तो उसको एक गोल्डन डिब्बा में या एक सिल्वर डिब्बा में पैक करके आपको दिया जाएगा। लेकिन कोई इमिटेशंस खरीदते हैं, बहुत सस्ता कोई चीज अगर सस्ती हो तो क्या होगा, आपको प्लास्टिक डिब्बा में ही मिलेगा। इसी प्रकार आत्मा जैसे जैसे सतो प्रधान बनती जाती है, हमारे शरीर भी इतना निरोगी और इतना सुंदर बनता जाता है। तो देखिए, मेडिटेशन किसे कहा जाता है? मेडिटेशन इज रियलाइजिंग द सेल्फ एज ए सोल एंड रिमेम्बरिंग द स्वीटेस्ट फादर सुप्रीम सोल। स्वयं को आत्मा समझकर पिता परमात्मा को याद करना, इसका नाम ही मेडिटेशन है। इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। जो आप पद्मासन में बैठो, कोई मृगखाल में बैठो, कोई नदी तट के जाओ, कोई कल्प वट के नीचे बैठो, कोई जरूरत नहीं है। एक छोटा बच्चा जैसे अपने माँ बाप को याद करता है, वो कहीं भी याद करता है, इसी प्रकार आप अपने पिता को याद करना, लवफुल रिमेम्बरेंस ऑफ द सुप्रीम फादर, बड़े प्यार से अपने पिता को याद करना, उसका नाम ही मेडिटेशन है। एंड मेडिटेशन इज कॉन्शियस कॉन्शियसनेस ऑफ द सुप्रीम कॉन्शियसनेस। क्या मतलब है? दुनिया में आपको मेडिटेशन सिखाने वाले बहुत मिलेंगे, और जैसे मेडिटेशन के लिए कहा जाएगा आप भी आंख बंद करके ऐसे बैठ जाते हैं। दुनिया में सभी आंख बंद करके मेडिटेशन सिखाते हैं, परंतु ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में यहां जो मेडिटेशन आपको सिखाया जाता है, यहां कोई आंख बंद करके नहीं, क्योंकि ये कॉन्शियस स्टेज में किया जाता है। आंख बंद करके कब सो भी जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। आंख बंद करके सो जाना उसको कोई मेडिटेशन नहीं कहा जाता है। एक कॉन्शियस स्टेज में रहते हुए, एक जागृत अवस्था में रहते हुए, एक सचेतन स्थिति में रहते हुए, जो सुप्रीम कॉन्शियस हमारे पिता परमात्मा के प्यार में डूब जाना, उनको याद करना, उसका नाम ही मेडिटेशन है। और मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन इज द गोल्डन की फॉर ऑल अटेनमेंट्स फ्रॉम द सुप्रीम फादर। परमात्मा से सर्व प्राप्तियां की चाबी है, कुंजी है मेडिटेशन। आप अगर मेडिटेशन करेंगे, हम आज तक मंदिरों में जाके क्या करते थे? भगवान को मांगते थे, क्या कहते थे? तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के हम प्यासी हैं, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर ना हो। परंतु मांगने से कोई चीज नहीं मिलती है। आपका बेटा भी अगर कुपुत्र है, मान लीजिए आपका एक बेटा नालायक है, वो आपको कितना भी कुछ मांगे आप देंगे? कभी नहीं देंगे। लेकिन अगर योग्य संतान है, सुपुत्र है, वो बिन मांगे भी उसको जो चाहिए वो पहले से ही आप दे देते हैं। इसी प्रकार भगवान से मांगने से कुछ नहीं मिलेगा। हम द्वापर युग से मांगते मांगते मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वार में, चर्च में जाते जाते प्रेयर करते करते थक गए। क्या हो गया? हमारी अधोगति हो गई। अब परमात्मा आके कहते हैं, मेरे बच्चे, मेरे से सब कुछ लेना तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तुम मुझे पहचानो तो सही, मेरे साथ योग लगाओ, मैं तुमको सब देने के लिए तैयार हूं। तो भगवान से सर्व प्राप्तियों के गोल्डन की है मेडिटेशन। एंड मेडिटेशन इज एक्सपीरियंसिंग द एंजेलिक स्टेज। आप मेडिटेशन से, राजयोग मेडिटेशन योग करते करते आपको ऐसा अनुभव होगा जैसे सचमुच आप एक फरिश्ता है, आप उड़ रहे हैं, आपके पांव धरती पे नहीं है, आप एकदम डबल लाइट हल्के हैं। और मेडिटेशन क्या है? परमात्मा से सर्वशक्तियां लेकर अपने जीवन के सारी बुराइयों को नष्ट कर देने का साइंस का नाम मेडिटेशन है। भगवान हमें इतनी शक्ति देते हैं कि अपने जीवन की बुराइयों को हम उस शक्ति से खुद ही नष्ट कर सकते हैं। वास्तव में जीवन में अच्छे मार्ग पर चलने के लिए भी शक्ति चाहिए, और बुराइयों को नष्ट करने के लिए, कुसंग से बचने के लिए भी शक्ति चाहिए। इसलिए हम भगवान को शक्ति मांगते थे, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर ना हो। लेकिन वो शक्ति लेने की विधि हमें पता नहीं थी। अभी परमात्मा हमें सिखाते हैं मेरे बच्चे जब तक आप अपने आप को शरीर समझते हो, ये शरीर तो एक रबड़ है, एक इंसुलेशन है, तो मेरे साथ कनेक्शन जोड़ोगे तो करंट कैसे पास होगा, क्योंकि मैं तो अशरीरी हूं। तो खुद अशरीरी बनकर पिता परमात्मा से अगर कनेक्शन जोड़ेंगे तो उनसे इतनी शक्ति मिलेगी। परमात्मा कहते हैं मेरे बच्चे मेरे साथ कनेक्शन जोड़ के तो देखो, तुम्हें इतनी शक्ति मिलेगी कि तुम स्वयं तो क्या समग्र विश्व को प्रकाशित कर सकते हो, तुम्हें इतनी अथाह लाइट और माइट मिलेगी। तो जीवन की सारी बुराइयों को, बुरी आदतों को नष्ट करने का नाम है मेडिटेशन। इस प्रकार मेडिटेशन इज एक्सपीरियंसिंग बॉडीलेस एंड डबल लाइट। जितना जितना आप मेडिटेशन में अभ्यासी हो जाएंगे, ऐसा लगेगा जैसे कि शरीर है ही नहीं, एकदम हल्कापन, इतना लाइट आपको अनुभव होगा कि उस समय जो आनंद की स्थिति होगी, आप योगियों ने जिन्होंने अनुभव किया है वो कहते हैं आनंद ही आनंद, परमानंद, उस स्थिति का गायन है। इसलिए योगी लोग अपने नाम में हमेशा आनंद टाइटल जोड़ देते हैं, शिवानंद, चिदानंद, विवेकानंद, दयानंद, सब आनंद शब्द जोड़ देते हैं। तो इसलिए योग द्वारा इतनी आनंद की स्थिति की अनुभूति होगी, आप खुद अनुभव करेंगे। एंड मेडिटेशन इज रिमेम्बरिंग गॉड आवर बिलव्ड फादर। अभी पता चला भगवान कौन है, कौन है, कौन है हम सभी का, वो हमारे पिता हैं, जिसको हम गॉड फादर कहते थे, परम पिता कहते थे, तुम्हें वो माता जो पिता कहके पुकारते थे। तो वो पिता परमात्मा को प्यार से याद करना, वो शिव बाबा को याद करना, जो पाप कटेश्वर है, सर्व पाप हर हर है, मुक्तेश्वर है, उनको याद करने का नाम मेडिटेशन है। एंड मेडिटेशन इज स्प्रेडिंग वाइब्रेशन ऑफ गुड विशेस टू द एंटायर वर्ल्ड। पहले हम भक्ति में कहते थे सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणी पश्यंतु, मां कश्चित दुख भाग भवेत, परंतु वो खाली तोता की मिसल रटते थे। अभी प्रैक्टिकल हमारे जीवन में वास्तव में हृदय से सबके प्रति ये उद्गार निकले कि सबका भला हो। और मेडिटेशन जैसे एक छोटा बच्चा अपना माँ बाप का हाथ पकड़ के रखता है तो उसको कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, इस प्रकार ये भवसागर से अनेक प्रकार के समस्या, विघ्न, परिस्थिति तो जीवन में आएगी, लेकिन परमात्मा प्यार, प्यार में परमात्मा को प्यार से उनका हाथ को पकड़ते हुए जीवन के सभी विघ्न को पार कर जाना, इसका नाम ही मेडिटेशन है। एंड मेडिटेशन इज द पाथ टू लिबरेशन एंड लिबरेशन इन लाइफ। जीवन में अगर मुक्ति और जीवन मुक्ति पाना चाहते हैं तो मेडिटेशन ही एक ही मात्र रास्ता है। और मेडिटेशन में रहना अर्थात यही सोचना कि भगवान मुझे देख रहे हैं। आज कोई व्यक्ति पाप क्यों करता है, क्योंकि उनको विस्मृत है। अगर कोई व्यक्ति भगवान को याद करता है तो कभी भी जीवन में पाप कर्म नहीं कर सकता है, ना कोई मर्डर कर सकता है, ना कोई चोरी कर सकता है। तो अगर निरंतर हम याद में हैं कि भगवान मुझे देख रहे हैं तो आप जीवन में कभी भी पाप कर्म नहीं कर सकते हैं, इस भवसागर से ऑटोमेटिकली मुक्ति हो जाएगी। एंड मेडिटेशन मेक्स वन फील कंप्लीटली स्ट्रेस फ्री इन द डिवाइन लेप ऑफ गॉड द मदर। जैसे एक छोटा बच्चा माँ की गोदी में होता है तो कितना वो निश्चिंत रहता है, कोई तनाव नहीं, कोई टेंशन नहीं। इसी प्रकार अपने को एक परमात्मा संतान, एक बच्चा समझते हुए भगवान की गोदी में अपने को एकदम तनाव मुक्त अनुभव करने का विज्ञान का नाम ही मेडिटेशन है। आशा है आप सभी मेडिटेशन सीखेंगे, अब तनावग्रस्त रहेंगे। तनावग्रस्त जो जीवन में अनेक समस्याओं से हम हो चुके थे उससे मुक्त हो जाएंगे। इसलिए मेरे भाई और बहनों, आप सभी यहां से अच्छी तरह से राजयोग मेडिटेशन सीख के जाइए, देखिए जीवन में एक नया जन्म मिला, आप यहाँ आना कितना एक सफल हो गया, जीवन में एक नया मोड़ आ गया, ऐसा अनुभव करेंगे। और दूसरी बात है, आपको ट्रायड में बताया था, एक है मेडिटेशन फॉर स्ट्रेस रिलीविंग, दूसरा क्या बताया, बैलेंस्ड एंड वेजिटेरियन डाइट। अगर आप स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो आपको आपका भोजन भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर भोजन ठीक नहीं किया आपका मेडिटेशन भी, आपका ध्यान भी लगेगा नहीं परमात्मा से, क्योंकि जैसा अन्न ऐसा मन, जैसा अन्न ऐसा तन। तो आपका भोजन भी किस प्रकार का होना चाहिए वो आपको जानना जरूरी है। देखिए आप सभी को बताया गया होगा कि ये शरीर एक गाड़ी जैसी है और आत्मा इसमें ड्राइवर है। अगर आप एक गाड़ी खरीदते हैं तो क्या करेंगे, गाड़ी क्या करेंगे, गाड़ी में रोज आपको फ्यूल डालना पड़ेगा, है ना, नहीं तो ही तो गाड़ी चलेगी। इस प्रकार ये शरीर रूपी गाड़ी को चलाने के लिए भी, इसमें हमें शक्ति पाने के लिए कुछ हम भोजन हम नित्य खाते हैं और वो भोजन से हमें शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलता है। परंतु विडंबना की बात है कि जैसे एक पेट्रोल गाड़ी कोई खरीदता है तो उसमें डीजल किरोसिन पानी नहीं डालता है, क्या डालता है, पेट्रोल नहीं डालेगा। परंतु ये शरीर रूपी गाड़ी, इसमें जो हमें डालना चाहिए वो हम नहीं डालते हैं, हम इसमें क्या क्या डालते रहते हैं जिसके कारण ही आज हम बीमार हैं। देखिए कोई गाड़ी में अगर रिजर्व से भी कम हो गया, तेल बिल्कुल नहीं है, गाड़ी चलेगी। इस प्रकार कई भाई बहन क्या करते हैं, उपवास रखते हैं, फास्टिंग रखते हैं कई दिन तक भी, कहते हैं इस पेट को थोड़ा रेस्ट चाहिए। लेकिन मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूं, आपका पेट को आप रेस्ट देना चाहते हैं, आपका हार्ट को कभी रेस्ट दिए हो आप, एक दिन आपका हार्ट को भी रेस्ट दे दो ना, बेचारा जब से पैदा हुए हैं तब से धड़क 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 वो कंटिन्यूअसली पंप करता जा रहा है, उसको कभी रेस्ट दीजिए ना। इस प्रकार देखिए आप अपने सांस, जब से पैदा हुए हैं मरते दम तक हम सांस लेते रहते हैं, सांस को रेस्ट दे दीजिए ना, क्यों नहीं देते हैं। तो पेट को भी रेस्ट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप श्रीमद् भगवत गीता पढ़िए, भगवान क्या कहते हैं, श्री भगवान वाच है कि हे अर्जुन, अति आहार और अनाहार ये योगी का लक्षण नहीं है। इस प्रकार अति निद्रा अनिद्रा ये भी योगी का लक्षण नहीं है, योगी माना संतुलित जीवन वाला, बैलेंस्ड लाइफ। तो इस प्रकार जिस दिन आप रोज खाते हैं, जिस दिन आप नहीं खाएंगे उस दिन आपके पेट के अंदर जो एंजाइम्स है, खाना को हजम करने वाले एंजाइम्स सीक्रेट होंगे, और वो जब भोजन नहीं होता है अपने अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है उसको वो इरोड कर लेते हैं, जिसके कारण पेप्टिक अल्सर होता है, एसिडिटी होती है। और जो फास्टिंग करते हैं देखा गया है उनके यूरिक एसिड बहुत बढ़ जाते हैं, गाउट प्रेसिपिटेट हो जाता है, कई बीमारी हो जाती है। इसलिए पूरा एकदम निर्जला उपवास करने की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ आपको मूड है तो थोड़ा फलाहार कीजिए, हल्का भोजन कीजिए, लेकिन बिल्कुल नहीं खाना वास्तव में ये गलत है। इसी प्रकार एकदम कभी मिलता है कहीं तो बिल्कुल आकंठ भोजन कर लिया, आ करने से भी दिखेगा क्या खाए हैं, तो ऐसा भोजन भी नहीं करना चाहिए। जैसे आपको एक चुटकुला सुना देता हूं, एक पंडित जी, उनको एक दिन रात में बहुत पेट में दर्द हुआ तो डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर आके देखे, पूछे क्या हाल है, क्यों हुआ है ऐसा, तो डॉक्टर को पता चला कि लास्ट नाइट में पंडित जी कहीं भाषण करने कथा करने गए थे, उनको वहां अच्छी तरह से कुछ खिलाया पिला गया और खा के आए तब उनको पेट में दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर ने सलाह दिया कि पंडित जी आपका ये बदहजमी हो गया है, आप में दो तीन कैप्सूल लिखता हूं ये खा लीजिएगा, आप पेट ठीक हो जाएगा। तो पंडित जी कहते हैं, डॉक्टर साहब मैं अगर दो तीन कैप्सूल खाने का मेरी जगह होता तो मैं दो गुलाब जामुन एक्स्ट्रा नहीं खा लेता। तो कहने का मतलब है हम इतना भी नहीं खाएं जो एकदम आ करने से दिखेगा, वो भी गलत है। किसी टंकी में, गाड़ी के टंकी में ओवरफ्लो कर दो, इतना फ्यूल डाल दो कि ओवरफ्लो हो जाए, क्या हाल होगा, दोनों ही नुकसानकारक है। तो योगी अर्थात संतुलित जीवन वाले। परंतु क्या हम अपने शरीर रूपी गाड़ी में राइट प्रकार के फ्यूल डालते हैं, जो डालना चाहिए डालते हैं, अपने आप को पूछिए। हम नहीं डालते हैं क्योंकि मनुष्य एक मांसाहारी प्राणी नहीं है। दुनिया में दो प्रकार के प्राणी होते हैं, एक है शाकाहारी एक है मांसाहारी। मनुष्य एक मांसाहारी प्राणी नहीं है। क्यों, अगर आप देखेंगे मांसाहारी प्राणी में देखिए इतने बड़े बड़े दांत होते हैं, क्या मनुष्य के पास है ऐसा, नहीं है। हमारे दांत इतने बड़े बड़े किसी को खाने के लिए ऐसी चीजें नहीं है, परंतु हम अभी भी हम ऐसी चीजें खाते हैं जो मांसाहारी खाते हैं। इस प्रकार हमारे पंजे में बड़े बड़े नाखून ऐसे नहीं है, शार्प एकदम पॉइंटेड स्ट्रांग नाखून नहीं है, क्लॉज नहीं है जो किसी को शिकार करने के लिए। हम शाकाहारी प्राणी हैं परंतु अभी भी फिर भी हम ऐसी चीजें खाते हैं, तो क्या हाल होगा। किसी व्यक्ति को लगातार नॉनवेज खाली खाते दे दिए, देखिए उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। परंतु साग सब्जी फल खूब खाइए, कुछ भी नहीं होगा, आपका तन एकदम ठीक रहेगा, कॉन्स्टिपेशन कभी नहीं होगा। तो साइंटिस्ट वैज्ञानिकों ने देखा है कि मनुष्य का जो शरीर की जो शारीरिक गठन है ये एक शाकाहारी प्राणी का है। अगर इसमें हम ये सब चीजें डालते हैं तो कैंसर, दमा, हाई कोलेस्ट्रॉल होने के कारण हार्ट की बीमारियां, ब्लड प्रेशर, ये सारी बीमारियां हो रही है। इसलिए अभी डॉक्टर्स लोग खुद कहते हैं कि ये सब चीजें नहीं खाओ। तो परंतु ये सब चीजें हम खाते रहते हैं। तो हम कहते हैं कि मनुष्य सभी प्राणियों में से श्रेष्ठ है। इसलिए श्रेष्ठ है कि जिसको हम घर में पाल पोस के रखते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, सर्दी गर्मी से बचाने के लिए उसको शेड बना देते हैं, कभी बीमार हो जाता है तो उसको लेके वेटरनरी सर्जन से दवाई भी कराते हैं, और कभी एक दिन घर में शादी हुआ, ब्याह हुआ तो उसको मोड़ के खा जाते हैं, मार के खा जाते हैं। यही ह्यूमैनिटी है, सोचिए तो सही। हमारे भी बच्चा को कोई अगर किसी के घर में रखे, अपने घर में खिलाए पिलाए पढ़ाए और एक दिन उसको मार के खा जाए, हमें कैसा लगेगा? यही मानविकता है, सोचिए तो सही। तो मनुष्य क्या हम इसलिए श्रेष्ठ प्राणी है? इतने भी संवेदना हमारे पास नहीं है? तो वास्तव में ये पेट को, ये हमारा शरीर तो एक मंदिर है, परंतु हम इतने सारे गंदी चीजें हम इसको डालते हैं तो ये तो श्मशान घाट बन गया है। तो अभी भी जागने का समय है मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, आप आए हो। हमारे देश की संस्कृति नहीं थी, आज किसी भी मंदिर में जाइए कोई भी ऐसी चीजें हम वहां हमारी मूर्तियों को भी नहीं देते हैं, लक्ष्मी नारायण, राम, सीता, राधे कृष्ण की मूर्तियों तक भी नहीं देते हैं। तो क्या हम खाते थे? हमारे देश में दूसरे दूसरे लोग, विदेशी लोग आके ये सब हमारे धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट करा दिए हमें। और आपको आश्चर्य लगेगा, हमारे देश में चाय, 200 साल पहले हमारे देश में चाय भी कोई नहीं पीते थे, विदेशी लोग आए हमारे देश में चाय उगाना सिखाए, हमें चाय पिला के आदत ही बनाए, एडिक्टेड करा दिए। और आज भी हमारे चाय को लेके अच्छी तरह से पैकिंग करके वही चाय को 10 गुना रेट में हमें बेचते हैं और हम चाय पीते हैं। कितना बुद्धिमान है हम। तो हमारे देश की संस्कृति और कुछ थी। तो मेरे दोस्तों, ये सब चीजें नहीं खाना चाहिए। 5 मुख्य चीजें आज दुनिया में खूब लोग खा रहे हैं जिसके कारण ही कैंसर हो रहा है। वो 5 चीजें क्या है आपको दिखाता हूं। जानते हैं ये क्या चीज है? क्या चीज है कोई भी बताए? शहरों में जो रहते हैं वो खाते हैं, बच्चे तो खूब प्रिय हैं इसके। इसको कहते हैं हॉट डॉग, कोल्ड डॉग नहीं है, हॉट डॉग। इसके सारे उसके अंदर वो मांस है और कई सारी गंदी चीजें हैं, नाइट्रेट्स हैं जो कि कैंसर पैदा करता है। आज बड़े बड़े कंपनियां मैकडोनाल्ड्स आदि ये सब चीजें बना के सिटीज में बेचते हैं, लोग यही खा रहे हैं, जिसके कारण ही कैंसर से लेके कई बीमारियां हो रही है। दूसरा ये क्या है? ये क्या है? इसको बर्गर कहा जाता है, हमबर्गर। इसमें भी कई प्रकार के सोडियम नाइट्रेट्स हैं, सैचुरेटेड फैट है, इसमें भी मटन आदि डालते हैं, ये सब खा के लोगों को कैंसर हो रहा है। ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? इसको कहते हैं डाउनट। इसमें भी सैचुरेटेड फैट है, ट्रांस फैट है, जिसको खा के ही, मैदे की चीजों से ये बनी हुई है, इसको खा के भी सारी बीमारियां हो रही है। ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? इसको कहते हैं फ्रेंच फ्राइज। आलू को तला जाता है, तल के लोग खाते हैं, इसमें इतना तेल, बार बार तलने से वो ट्रांस फैट हो जाता है, जिसके कारण हार्ट की बीमारियां, हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, ये सब बीमारियां हो रही है। ये क्या चीज है? ये 5वां चीज है, ये तो बहुत कॉमन है, सभी खाते हैं आजकल, जहां जाओ हर गली गली में मिलता है, सब बच्चे इसको खाने के लिए प्रिय हैं। माँ बाप भी अभी अगर नौकरी करते हैं तो कौन बनाता है, चलो रेडीमेड बना के ले आए, जंक फूड, फास्ट फूड खाते रहते हैं। कोई ट्रैवल करता है यही खाते हैं। ये सब चिप्स हैं और क्रैकर्स हैं, कुकीज हैं, इसमें खूब ट्रांस फैट्स हैं और जिसके कारण ही ये सब बीमारियां हो रही है। मैं अभी 2 वॉलंटियर को इन्वाइट करूंगा, एक भाई और एक बहन आइए, मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें क्या होता है। आइए, कोई दो, एक बहन आ जाइए, एक भाई आ जाइए, प्लीज सामने से कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए, आपको मैं कुछ दिखाऊंगा। हेलो, हाँ मैं आपको दिखा रहा हूं। एक क्या चीज है भाई जी? एक क्या चीज है? ये बाजार का चिप है, मैं लेके आया हूँ, आपको जला के दिखाता हूँ। इसमें ये जला के दिखाऊंगा, एक चिप से कम 30 बूंदा तेल निकलेगा, फट डप डप। यहाँ कई बार मैं दिखाया हूँ। और जलता कितने समय तक? ठीक है, देखिए ये गिर रहा है, 2 बूंद गिर चुका है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 हो गया। और भी जलेगा, अभी बुझ गया, रख दीजिए, थैंक यू। आप सभी ने देखा 30 बूंदा तो तेल गिरा, लेकिन कितने समय तक जला, कितना तेल होगा अंदर? एक चिप में कम से कम 50 बूंद तेल होता है। और जब कोई खाने बैठता है कितना खाता है? 1-2 खाता है चिप कोई? कितना खाता है? पूरा पैकेट का पैकेट खा जाते हैं। कितना तेल होगा उसमें? कहते हैं हम कुछ नहीं खाते हैं फिर भी इतने मोटे हैं। बिना खाए कोई मोटा होगा? और ये तेल सबसे नुकसानकारक है, क्योंकि जो कढ़ाई में एक बार तेल डाला जाता है उसको बार बार जब हम तलते हैं तो उसमें ट्रांसफेट हो जाता है। बार बार उसको गर्म करते हैं, कोई एक बार तल के पूरा उसको तो खत्म नहीं कर लेता है, कढ़ाई में तेल भरा रहता है, बार बार उसको गर्म करता है, बार बार तलता है, जिसके कारण ट्रांसफेट हो जाता है। तो माताएं ध्यान रखिए, घर में कभी भी तलते हैं तो सबसे अच्छा तेल है मूंगफली का तेल। अगर तलना चाहते हैं तो मूंगफली का तेल में तलिए, उसमें कम से कम तेल यूज एब्जर्ब होगा। अगर आप राइस ब्रान तेल यूज कर सकते हैं तो बेस्ट है, राइस ब्रान नाम से आता है, वो तेल में कम से कम चुसता है। अगर आप उसमें तलेंगे तो कम तेल एब्जर्ब होगा, बाकी दूसरे तेल में जब तलते हैं तो बहुत चुसता भी है। दूसरी बात है, आप अगर बार बार उसको गर्म करते हैं, कोई भी चीज बार बार गर्म करने से उसमें ट्रांसफेट बन जाता है, वो बहुत नुकसानकारक है। इसलिए आप इसका ध्यान रखना, बाहर की ये चीजें कभी नहीं खाना, अगर खाएंगे तो कभी भी ये बीमारियों से बच नहीं सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिए, पहले डॉक्टर्स लोग कहते थे संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, लेकिन हम कहते हैं संडे हो या मंडे, बताइए सभी, संडे हो या मंडे कभी न खाओ अंडे। तो देखिए जीवन में ये सब, इसमें ही इतने कोलेस्ट्रॉल होते हैं, इतने हाई कोलेस्ट्रॉल होते हैं, जिसके कारण ही हार्ट की डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, ये सब बीमारियां हो रही है। तो इसलिए हमारे देश की ये सभ्यता ही नहीं थी। तो मैं आपको दिखा रहा था कि ये सब अनहेल्दी डाइट है। जीवन में हम सभी बीमार इसलिए हैं क्योंकि ये सब चीजें जो नहीं खानी चाहिए, ये शरीर रूपी गाड़ी में जो फ्यूल नहीं डालना चाहिए हम डाल रहे हैं, जिसके कारण आज हम बीमार हैं। और इस प्रकार हम सभी, आजकल हमारे पास जूसर है, कोई भी फ्रूट चुबाना हम नहीं पसंद करते हैं, जूसर में डाला, घर किया, जूस निकाला, पी लिया, क्या होगा? हमारा शुगर भी, ब्लड शुगर भी ऐसा सुट कर जाता है। फ्रूट जूस वास्तव में नहीं पीना चाहिए, किसी भी प्रकार का ये सब सिरप जूस आदि नहीं पीना चाहिए। अगर हम फ्रूट खाते हैं, चुबाते हैं, हमारे मसूड़े को एक्सरसाइज भी होती है, उसका रेशा जो है वो हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है, वो भी मिलता है हमें। और ये सब चीजें आज बहुत सारी कंपनियां ये सब हम सभी को बहुत सुंदर सुंदर एडवर्टाइजमेंट दिखाकर मोहित कर लेते हैं और ये सब हम पीते रहते हैं। इसमें मेरे दोस्तों, इसमें 50 पैसा का भी फूड वैल्यू नहीं है, इसमें खाली जहर है, जहर पैजन है। आप अगर ये लेके बीमार होना ही सार होगा। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं ये कभी नहीं पीजिए। हमारे देश में कोई पहले कोई मेहमान आते थे, कोई आते थे तो हम उनको दूध पिलाते थे, छाछ पिलाते थे और कुछ लस्सी पिलाते थे, लेकिन आजकल का जमाना है, कोई आया तो मैं भी पीता हूं, तुम भी पियो कोल्ड ड्रिंक। तो ये सब इसमें बिल्कुल नुकसानकारक चीजें हैं, कभी भी ये सब टच नहीं करना है, आप अगर स्वस्थ जीना, जीवन जीना चाहते हैं तो। और अगर आप मोटे हैं, आप अगर वजन घटाना चाहते हैं, तो ये सब चीजें 6 P's में बताता हूं, पूड़ी पेड़ा पकोड़ा पिज्जा पकवान पराठा ये सब खाएंगे तो कैसे हमारा वजन कम होगा। वास्तव में जितना साग सब्जियां वेजिटेबल जितना हो सके फ्रूट्स जितना हो सके अच्छा है। माताओं को तेल तली हुई चीज ना के बराबर घर में होना चाहिए। आप याद रखिएगा एक परिवार में कितना लीटर तेल और घी यूज होना चाहिए जानते हैं? आप खुद आप पूछिए, आप अंदाजा लगाइए। मैं आपको जो बताता हूं सुनिए, उसी अनुसार आप समझ सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। माताएं समझती हैं कि ज्यादा तेल ज्यादा घी देने से ही बहुत एकदम टेस्टी बनते हैं। वास्तव में नहीं, उसमें और ही स्वास्थ्य बिगड़ता है। एक परिवार में एक अगर सदस्य है तो उसके लिए सारे महीने में एक महीने के लिए तेल मैक्सिमम आधा किलो ही यूज होगा। अगर किसी परिवार में चार सदस्य हैं तो तेल और घी मिला के 2 लीटर से ज्यादा नहीं, और उसमें से चौथा घी होना चाहिए। 1/4 अर्थात 1 पाव घी होना चाहिए, 3 पाव तेल होना चाहिए। और तेल भी 3 प्रकार का हो, सनफ्लावर का, मूंगफली का, सरसों का। एक एक पाव 3 पाव अलग रखिए, कभी ये कभी ये कभी ये, तो ही आप हेल्दी रहेंगे। अगर ज्यादा तेल यूज करेंगे तो कभी भी मोटापा से आप कभी भी मुक्त नहीं हो सकते हैं, सब प्रकार की बीमारियां होगी। और आजकल के जमाने में जो देसी घी कहो या विदेशी घी कहो, डालडा कहो, मक्खन बटर, ये सब जो एटमोस्फेरिक एयर में जम जाते हैं, जब हम इसको खाते हैं और एयर कंडीशन रूम में बैठे रहते हैं, हिलना डुलना भी नहीं है, तो ये हमारे नसों में जाके जम जाते हैं, जिसके कारण हार्ट के नसें अगर ब्लॉक हो गए हार्ट अटैक हो जाता है। तो आज ये सारी बीमारियों का जड़ हमारे तेल और घी है। जितना कम हो सके, आप परिवार में स्वस्थ रहना चाहते हैं तो माताएं बहनें खास ध्यान रखिए, घर में मिनिमम, आजकल तो नॉनस्टिक के पैन कढ़ाई आदि सब मिलते हैं, तो बनाइए जितना हो सके साग सब्जियां वेजिटेबल कम से कम तेल से बनाइए। तली हुई चीज कभी कोई महीने में एक बार हो गया अलग बात है, रोज ये सब चीजें नहीं लेना चाहिए। तो ये जो फेस्टिवल फूड्स हैं, कभी शादी है, ब्याह है, कहीं जाते हैं, बहने कभी कभी ब्रह्मा भोजन आपको खिलाती होगी, बुला के कहेंगे ये क्या नहीं खाएंगे? अवश्य खाओ, खाना कोई मना नहीं है। लेकिन जिस दिन ये खाते हैं फिर आप रोज का जो भोजन है, आप चावल चपाती ये सब चीजें त्याग करिए। लोग ये भी नहीं छोड़ते हैं, वो भी नहीं छोड़ते हैं, जिसके कारण ही मोटे होते जा रहे हैं, बीमार होते जा रहे हैं। तो इसलिए खान पान का ध्यान रखिए। ये जो जंक फूड बताया, फास्ट फूड बताया, इसमें भी ट्रांस फैट्स होते हैं जो हमारे हार्ट के लिए हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानकारक है। अगर ट्रांस फैट ही अगर कुछ परसेंट, सिर्फ 2% भी अगर आप कम कर देंगे, हार्ट अटैक 53% कम हो जाता है, ये साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च करके देखा है। तो इसलिए अगर स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो ये सब चीजों से मुक्त रहिए। डाइट, इसके बारे में कहावत है हेल्दी डाइट फॉर ए हेल्दी बॉडी। जब तक आप अपना भोजन को संतुलित और ठीक नहीं करेंगे, आपका स्वास्थ्य कभी भी ठीक नहीं हो सकता है। और लॉन्ग बैक शेक्सपियर ने कहा था कि लेट मी नो योर डाइट, आई विल टेल व्हाट यू आर। तुम क्या खाते हो अगर मुझे बता दोगे तो तुम किस प्रकार का व्यक्ति हो मैं बता दूंगा। तो यहां भी आपको बताया होगा कि अगर आध्यात्मिक साधना करना चाहते हो, राजयोग सीखना चाहते हो, सुंदर जीवन जीना सीखना चाहते हो, तो शाकाहारी भोजन, जिसमें हमारा शुद्ध सात्विक भोजन बताया जाता है, तो जैसा अन्न ऐसा मन होता है। अगर मानसिक रीति से भी स्वस्थ रहना चाहते हैं, सदा आनंदित, सदा प्रफुल्लित, सदा खुश रहना चाहते हैं, तो भोजन पर इतना ही ध्यान देना जरूरी है। तो इसलिए आप अपने खान पान में जितना हो सके साग सब्जियां वेजिटेबल्स फ्रेश फ्रूट्स ये सब सिलेक्ट कीजिए, और ये सब तेल तली हुई चीजें जो हाई कैलोरी डाइट है ये सबको रिजेक्ट कीजिए। सो चेंज योर डाइट एंड चेंज योर लाइफ। दूसरी बात है, तीसरी बात आपको क्या बताया था, फिजिकली एक्टिव लाइफ एंड एक्सरसाइज। अगर जीवन में स्वस्थ रहना चाहते हो, आप चुस्त फुर्त रहिए, फिजिकली एक्टिव रहिए, बैठे रह के एकदम सिडेंटरी लाइफ, आलसू लाइफ नहीं बिताइए। महात्मा बुद्ध ने लॉन्ग बैक ही रियलाइज, उन्होंने कहा था कि अगर आपकी आध्यात्मिक जागृति चाहते हो तो ये शरीर बहुत मूल्यवान है, इसका ध्यान रखिएगा। और देखिए, हम शरीर को एक कार समझते हैं तो ये आत्मा इसमें एक ड्राइवर है। तो जैसे किसी गाड़ी को आप खरीद के उसका राइट फ्यूल डालते हो, पेट्रोल डालते हो, पेट्रोल गाड़ी में पेट्रोल, डीजल गाड़ी में डीजल, ना सिर्फ इतना, गाड़ी को अगर बहुत कॉस्टली एक कार खरीद लिया और गैरेज में उसको रखे रहे, चलाए नहीं कभी, क्या होगा जंक ही हो जाएगा। इसी प्रकार ये शरीर भी एक गाड़ी है, इसको भी चलाना पड़ेगा। ये शरीर रूपी गाड़ी को अगर नहीं चलाएंगे तो ये गाड़ी भी जंक हो जाएगा, बीमार हो जाएंगे। इसलिए एक्सरसाइज करना ये भी जरूरी है। ये सबको फिजिकल एक्सरसाइज, ये सब एरोबिक एक्सरसाइज हम कहते हैं, चलना, दौड़ना, साइकिल चलाना, ये सबको एनएरोबिक एक्सरसाइज कहते हैं। जैसे जिम खाना में जाके कई लोग ये सब करते हैं, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। और इस प्रकार रामदेव बाबा जो सिखा रहे हैं योगासन, प्राणायाम आदि, ब्रीदिंग एक्सरसाइज आदि, तो तीन प्रकार के एक्सरसाइज बताते हैं। परंतु वास्तव में ये सब तीनों में से सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है एरोबिक एक्सरसाइज, जो हमारे हार्ट के लिए, लंग्स के लिए, सारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। जो खुले मैदान में, खुले जगह पे ऑक्सीजन लेते हुए हम जो करते हैं, उसका नाम है एरोबिक एक्सरसाइज। और वास्तव में स्वस्थ रहने के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, कि कोई ऐसा मिराकुलस दवाई नहीं है जो आप खा के एकदम हेल्दी हो जाएंगे। लेकिन इतना तो निश्चित है कि रोज अगर आप थोड़ा समय चलेंगे, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, ब्रिस्क वॉक करेंगे, तो आप डेफिनेटली हेल्दी रहेंगे। इसलिए चलना सबसे बढ़िया परफेक्ट एक्सरसाइज है, और चलना सबसे बढ़िया एरोबिक एक्सरसाइज है। चलने से हमारे सारे मसल्स, सारे बोन्स, शरीर के जितने भी मसल्स बोन है सब यूज होते हैं, तो इसलिए चलना सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है। किसने कहा है, वॉकिंग इज मैंस बेस्ट मेडिसिन, हिपोक्रेट जो फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं, उन्होंने कहा है। और सवेरे सवेरे जो चलता है उसको सारा दिन के लिए एक वरदान जैसे मिल जाता है। और इसलिए सवेरे आप नाश्ता करने से कम 2 माइल थोड़ा सा फास्ट चलिए, देखिए आपको जीवन में कोई भी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। WHO ने कहा है जो आधा घंटा रोज कम से कम 5 दिन भी हफ्ता में चलता है, उसको हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज आदि कोई बीमारी नहीं होगी, ये सर्वे करके दिखा गया है। तो एक्सरसाइज का बहुत महत्व है। जो रोज एक्सरसाइज करता है उसके शुगर कंट्रोल रहता है, उसके ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है, उसके कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो जाता है, डायबिटीज, इंसुलिन ये सब कम से कम हो जाते हैं। मैं ग्लोबल हॉस्पिटल में पिछले कई सालों से जो डायबिटीज का एक हम उसमें एक डिपार्टमेंट अलग खोले हैं, डायबिटीज क्लिनिक, जिसमें मैं देखता हूं कि जो मरीज कभी भी उनका शुगर कंट्रोल नहीं, कितने इंसुलिन, 3-3 बार इंसुलिन लेके गोली खा के भी कंट्रोल कभी भी नहीं, लेकिन जब भर्ती करके सवेरे शाम उनको आधा पौना घंटा एक्सरसाइज कराता हूं, उसी दवाई से उनका शुगर एकदम लो होने लगता है। तो दवाई कम करते करते 90% लोगों के इंसुलिन छूट जाते हैं, गोलियां एकदम कम से कम हो जाती है। तो एक्सरसाइज जैसे सस्ती दवाई दुनिया में कोई नहीं है स्वस्थ रहने के लिए। और एक्सरसाइज जो करता है उसके वास्तव में वजन भी संतुलित होकर रहता है, मेंटेन होकर रहता है, और कोई भी प्रकार की बीमारियां उसको नहीं होगी, और बहुत शक्तिशाली अनुभव करेंगे। जो रोज एक्सरसाइज करता है उसको नींद भी आती है अच्छी तरह से। टेंशन, तनाव, हमारे जो एक्सरसाइज करता है अपने ब्रेन में एंडोर्फिन्स, कई हार्मोन सीक्रेट होते हैं जो हमें एकदम आनंदित, आनंद विभोर रखते हैं, तनाव दूर हो जाता है और हमारा शरीर एकदम फ्लेक्सिबल हो जाता है, हमारे मसल्स, बोन सब स्ट्रांग हो जाते हैं। परंतु जो एक्सरसाइज करता है उसको रोज करने की आवश्यकता है। जैसे किसी चोर के साथ अगर 2 दिन भी आप संग करेंगे तो चोरी विद्या सीख जाएंगे, लेकिन एक साधु के साथ साधु बनने के लिए शायद सारा जीवन बिताना पड़ेगा। इसी प्रकार एक्सरसाइज भी एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है। अगर कितने दिनों से भी आप करते हैं, छोड़ दिया, तो फिर उसके जो पॉजिटिव इफेक्ट है, जो उसका असर होना चाहिए, वो फिर खत्म हो जाएगा। इसलिए एक्सरसाइज जब तक जीना है शरीर को चलाते रहना है। गाड़ी खरीद के गैरेज में रख दिए तो जंक ही खा जाएगा। तो WHO ने कहा है कि 30 मिनट रोज हम एक्सरसाइज करने की आवश्यकता है। जो एक्सरसाइज करने के लिए फुर्सत नहीं मिलता है उनको फिर बीमार होकर हॉस्पिटल में दाखिल होने के लिए जरूर फुर्सत मिलेगा। इसलिए एक डॉक्टर कहता है, पूछता है एक मरीज को, डॉक्टर पूछता है तुम्हें क्या पसंद है, आधा घंटा, 1 घंटा डेली एक्सरसाइज करके 24 घंटा चुस्त फुर्त रहो वो पसंद है, कि बिना एक्सरसाइज के 24 घंटे मुर्दे जैसे लटके रहे हो वो पसंद है, क्या पसंद है? तो मेरे दोस्तों, अगर देखो जीवन में हेल्दी रहना चाहते हो, सुखी रहना चाहते हो, तो नियमित थोड़ा एक्सरसाइज करो। लेकिन कौन सा एक्सरसाइज करें मैं आगे बताता हूं, सुनिए। हमेशा एक्सरसाइज करने से पहले किसी को, यहां मैं जानता हूं, किसी को डायबिटीज हो सकता है, किसी को ब्लड प्रेशर हो सकता है, किसी को हार्ट की बीमारी हो सकती है, कुछ भी करना शुरू नहीं कर दीजिएगा, हमेशा डॉक्टर को पूछना जरूरी है, क्योंकि ये राइट है, उचित है। अगर कोई इस प्रकार का एक्सरसाइज करता है तो ये ठीक है? हां कि ना, कोई जवाब नहीं दे रहे। देखो इतना मोटा है तो अगर वजन घटाना है तो कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा ना, तो ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं। जानते हैं एक पेशेंट आई थी इतनी मोटी, क्या वो पांव फ्रैक्चर करके आई थी, उसको प्लास्टर किए। मैं पूछा कि बहन जी आपका पांव कैसे ऐसे हो गया, तो कहती है एक कोई मुझे आया सलाह दिया, कहता है कि एक बच्चे जो रस्सी कूदते हैं ना, वो रस्सी आप लेके सवेरे 10 मिनट ऐसा कूदो, शाम को कूदो तो एकदम पतली हो जाओगी। 120 किलो थी तो रस्सी मंगा दी, और पहला दिन ही एक बार जंप, दूसरे बार जंप, तीसरे बार जंप करते समय पांव थोड़ा मोच हो गया, गिर पड़ी, फ्रैक्चर। 1.5 महीना तक खटिया में लेटी रही, 10 किलो वजन बढ़ गया। इसलिए आपको डॉक्टर के सलाह बिना कुछ भी एक्सरसाइज नहीं कीजिए। मैं आपको बताऊंगा कौन सा एक्सरसाइज बेस्ट है। देखिए सतयुग में और त्रेता युग में जब हमारे देश में लक्ष्मी नारायण और राम सीता थे, आप देखिए उनकी मूर्ति देखते हुए, उनके चित्र को देखते हुए दिल गदगद हो जाता है। कितना सुंदर तन है उनका, निरोगी काया, कंचन काया, सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण। हमारे पूर्वज ही तो थे, हमारे पूर्वज कैसे ऐसे थे? क्या उन दिनों में कोई वो जिमखाना में जाते थे और वो वेट लेके उठाते थे, डंबल बारबेल? क्या ये कपालभाति अनुलोम विलोम करते थे, भास्त्रिका करते थे, शीर्षासन, बकरासन, चक्रासन, मुर्गासन करते थे? ये सब कुछ नहीं करते थे, तो क्यों हेल्दी थे? देखिए जब त्रेता युग के बाद जब द्वापर युग आया तो भी हम हेल्दी थे, खेती बाड़ी करके पानी भी कुआं से उठाना, ये करना, भागना दौड़ना, सब मेहनत करते थे हम। लेकिन जब कलयुग आ गया, जब कलयुग आ गया कैसे बन गए आप देख लीजिएगा। ये अमेरिका में ऐसे लोग हैं जो कि 250-300 किलो के होते हैं, हमारी स्थिति कैसी बन गई आप देख लीजिए। हमारे भारतवर्ष में भी ऐसे बच्चे हो गए हैं जो बचपन से ही इतने मोटे हैं। सिर्फ बच्चे नहीं है, हमारे देश के पुलिस लोग भी देखो कैसे हालत है, जो कि स्वस्थ रहना चाहिए। किसने पूछा ये क्या कर रहे हैं, मैं बोला कि बातें कर रहे हैं लेकिन मुंह से बात नहीं कर रहे हैं। देखिए जब 1990 था हमारा टेलीविजन तो इतना मोटा था, पर हम लोग दुबले पतले थे, हमारा टेलीविजन, हमारा लैपटॉप, हमारे कंप्यूटर इतने दुबले, इतने मोटे मोटे थे। और जब 2012 आ गया हमारा टीवी कंप्यूटर सब दुबले पतले हो गए, और हम कैसे बन गए, कैसे बन गए? तो देखिए जीवन में कोई अगर 10 किलो भी मोटा हो जाता है उसके हार्ट को 1000 लीटर एक्स्ट्रा खून पंप करना पड़ता है, 1000 लीटर। तो सोचिए हार्ट का क्या हाल होगा बेचारा का। तो इसलिए देखिए आज हम मॉडर्न एज में क्या बन गए हैं, मशीन साधन आदि लेते लेते ये सब हमारे जीवन कैसा हो गया है, और हम सभी एकदम आलसू हो गए हैं, दिन रात बैठे रहते हैं। आजकल तो हमारे कुर्सियों में भी पहिए लग गए हैं, अगर कोई चीज उठाना है ऑफिस में, वहां फाइल है, उठ के नहीं जाना है, वो कुर्सी में ही घर करके जाएंगे, घर करके आएंगे। और हमारी माताओं बहनों को तो बहुत सुख है, पहले जमाने में कम से कम कपड़े धुलाई करते थे, आजकल वो नहीं है, घर करो तो कपड़े साफ हो जाते हैं। उतना तक भी नहीं, पहले जमाने में कपड़े ऐसे सुखाते थे, हाथ तो कम से कम ऐसा होता था, वो सुखाना भी आजकल नहीं है, ड्रायर मशीन में डाल दो, घर कर दो, हो गया। फिर हमारे पास आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब मेरा हाथ ही नहीं उठता है, हाथ ही नहीं उठता है। अरे जिंदगी भर ऐसा नहीं किया, हाथ कैसे उठेगा? तो इसलिए मेरे दोस्तों अगर स्वस्थ रहना चाहिए, अगर चाहते हैं तो क्या करना है, एक बहुत सहज विधि में बताऊंगा। आप सभी करना चाहते हैं? आप करेंगे तो मैं बताऊंगा, अभी करेंगे सभी? देखिए सतयुग और त्रेता युग में कोई किसी प्रकार का एक्सरसाइज नहीं करते थे, ना कोई हेल्थ क्लब था, ना कोई जिम खाना था, ना कोई कहीं अखाड़ा जाता था। वो क्या करते थे, क्यों हेल्दी थे? इसका मूल कारण था कि सभी रास करते थे, सवेरे सवेरे उठ के जाते थे और जाके खूब डांस करते थे। आपको पता नहीं है, कोई बहुत तेज दौड़ता है तो जितना कैलोरी नष्ट होता है, कोई डांस करता है तो उससे ज्यादा नष्ट होता है। डांस करना सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है। खुशी खुशी से कोई नाचता है तो ब्रेन से बहुत सुंदर एंडोर्फिन सीक्रेट होते हैं जो हमारे सारे सिस्टम को बहुत सुंदर बना देता है, इम्यूनिटी बढ़ता है, कोई रोग हमें आक्रमण कर ही नहीं सकते हैं। और डांस करने से सारे शरीर के अंग प्रत्यंग सारे जॉइंट्स मोबिलाइज हो जाते हैं। तो इसलिए देखिए आजकल बहुत सारे डांस स्कूल्स खुल गए हैं, लोग एक्सरसाइज करना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन डांस स्कूल में भी आप जाएंगे तो वहां भी पैसा देना पड़ेगा और हर शहर में तो होता भी नहीं है। इसलिए डांस घर में बहुत सुंदर म्यूजिक रखिए, बहुत सुंदर सुंदर म्यूजिक बजाइए और म्यूजिक के साथ थोड़ा झूमिए, देखिए एकदम पूरा तंदुरुस्त रहेंगे। और म्यूजिक बजने से तो किसी का भी टांग हिलना शुरू करता है, कंधा हिलना शुरू करता है, बूढ़े बूढ़े लोग भी हिलना शुरू करते हैं। अरे मनुष्यता क्या, जब म्यूजिक बजता है हाथी भी नाचना शुरू कर देता है, डिस्को म्यूजिक बजता है तो हाथी भी डांस करना शुरू कर देता है। इसलिए वॉक एंड बी हेल्दी, डांस एंड बी हैप्पी। अगर रोज आधा घंटा भी थोड़ा सा पैदल चलते हैं, जो गाड़ी मोटर में सेंटर में जाते हैं आप पैदल जाइए, पैदल आइए, देखिए थोड़ा समय आधा घंटा चलिए, एकदम चुस्त फुर्त रहेंगे, बिल्कुल आप कभी भी मोटे नहीं होंगे। आप कभी भी हमारे लक्ष्मी नारायण को, राम सीता को इतने बड़े बड़े पेट, इतना मोटू ऐसे चलते हुए कभी देखे हैं कहीं चित्र में? तो अगर मेरे भाई बहने अगर स्वस्थ रहना चाहते हो तो मैं अभी एक सुंदर गीत बजाऊंगा और वो गीत के साथ बहुत सुंदर धुन है हमारे बाबा के, इतने सुंदर सुंदर गीत है, आप कैसेट लेके जाइए, सीडी लेके जाइए और घर में बजा के थोड़ा सा झूमिए, देखिए एकदम फिट रहेंगे। सभी मेरे साथ झूमेंगे करेंगे? हमारे ब्रह्मा बाबा भी, आप उनकी पर्सनालिटी देखिए, बाबा 93 उम्र तक कोई डंडा नहीं पकड़े थे, बाबा कोई मोटे नहीं थे कि पतले भी नहीं थे, एकदम परफेक्ट हेल्थ था। बाबा 6 फुट वाला हाइट के थे और बाबा के हाथ तो पूरा घुटने तक लंबा था, जिसको महाभारत में शास्त्रों में गायन है, अजान उलंबित भुजा, बाबा की पर्सनालिटी ऐसी थी। बाबा चश्मा तक भी नहीं पहने थे क्योंकि बाबा सबको खूब एक्सरसाइज कराते थे, पहाड़ी चढ़ाते थे, सब कराते थे। और बाबा खुशियों में बाबा कहते थे बच्चे खगिया मारो, ऐसे ऐसे करना, इसको कहते हैं खगिया मारना, इसको कहते हैं खगिया मारना। तो बहुत जो खुशी होता है ऐसे ऐसे खगिया मारता है। तो यहाँ अभी बहुत सुंदर एक गीत बजाएंगे, मेरे साथ सब खड़े होके झूमेंगे थोड़ा, 5 मिनट ही करेंगे, सभी खड़े हो जाए, सभी थोड़ा दूर दूर हो जाइए, थोड़ा दूर दूर रहिए, सभी दूर दूर खड़ा हो जाइए, अच्छा रहेगा।
प्यारा बाबा मीठा बाबा, मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा, मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा, मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा, इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा, जिसको ढूंढ रही है वो धरती पे पधारा, आ मेरे लाडलो बच्चे कह के पुकारा, इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा।
शांति, बैठ जाए सभी, ओम शांति। सभी ये एक्सरसाइज कर सकेंगे? मजा आया? पसीना छूटा? 5 मिनट में पसीना छूट जाएगा आप सभी का, आप करके देखिए, एकदम तन मन दुरुस्त हो जाएंगे एकदम। ओम शांति। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सदा जीवन में चीयरफुल रहिए, सदा हेल्दी रहिए, वेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, चुस्त रहिए, फुर्त रहिए, सदा हमारे देश सभी निरोगी थे, ऐसे लक्ष्मी नारायण जैसा सभी एक एक निरोगी हो जाए, यही मेरे शुभकामना सबके लिए है। और एक खुशखबरी है, ग्लोबल हॉस्पिटल माउंट आबू में एक प्रोग्राम हम चालू किए हैं जिसका नाम है होलिस्टिक अप्रोच टू डायबिटीज, जिसमें मैं सिर्फ दवाई नहीं लिखता हूं डायबिटीज मरीजों का, उनके साथ उनको ब्लड प्रेशर भी हो, कोई भी बीमारी हो, उनका सर्वांगीण उपचार होता है, उनको ऐसे सवेरे शाम एक्सरसाइज करा के, मेडिटेशन सिखा के, एकदम कोई कैसा भी हो, 30 साल 20 साल से भी जिसका कभी कंट्रोल नहीं हुआ था, आके एकदम स्वस्थ होके जाते हैं। तो कोई भी अगर आप सेवा लेना चाहते हैं तो ग्लोबल हॉस्पिटल में भले पधारिए, देखिए जीवन में आपको एक नया जीवन मिलेगा। ओम शांति।